मुख्य समाचारों में फेडरल सरकार क्वींसलैंड बाढ़ वित्त पोषण पर पलटी। सिडनी में केवल 3 महीनों में ही वार्षिक औसत पार। और ऑस्ट्रेलिया के निक कैरियोस ने यूएस मेंस क्ले कोर्ट चैंपियनशिप में टॉमी पॉल को सीधे सेटों में हराया। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। सिडनी के दक्षिण में निचले इलाकों के निवासियों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पहले से ही संतृप्त राज्य में आगे और बारिश बन रही है। न्यू साउथ वेल्स हाल के महीनों में बार बार बाढ़ की घटनाओं को झेल रहा है। उत्तरी नदियों का क्षेत्र पिछले हफ्तों में 2 बार आए जल प्रलय से तबाह हो गया है और सिडनी भी लगातार बारिश में है। अधिकारियों ने दक्षिण और मध्य न्यू साउथ वेल्स, महानगरीय सिडनी, इलावारा, दक्षिण तट, मध्य और दक्षिणी टेबललैंड और हंटर के कुछ हिस्सों के लिए गंभीर मौसम चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान ब्यूरो से एल्सा स्कॉफील्ड का कहना है कि कई क्षेत्रों में इस साल मार्च की तुलना में बाढ़ का स्तर अधिक है।
We're not expecting to see the easing of this very heavy rainfall until this evening, where we will see the continuation of rainfall in these areas throughout Friday and over the weekend. We may also see moderate rainfall in parts of the Upper Macquarie, Bogan and Lachlan rivers from Friday into Saturday.
State Emergency Service ki Manly unit ne uttri samudra taton ke nivasiyon se ghar mein rehne ka aagrah kiya hai kyunki pure kshetra mein ped aur bijli ki laine lagatar gir rahi hain. प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड में बाढ़ राहत के लिए कई मिलियन डॉलर के अपने फंडिंग पैकेज सपोर्ट के निर्णय से अब पलट गए हैं। फेडरल सरकार ने शुरू में क्वींसलैंड सरकार के साथ बाढ़ रिकवरी के लिए 741 मिलियन डॉलर में आधी भागीदारी में जाने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि अधिकांश पैकेज राज्य की जिम्मेदारी थी। इस निर्णय के कारण क्वींसलैंड के कार्यवाहक प्रीमियर कैमरन डिक की ओर से प्रधानमंत्री के लिए तीखी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने प्रधानमंत्री पर फेडरल चुनाव को देखते हुए बाढ़ पीड़ितों के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया। लेकिन श्री मॉरिसन ने ब्रिस्बेन रेडियो 4BC को बताया है कि उनकी सरकार ने पहले ही क्वींसलैंड को 389 मिलियन डॉलर का भुगतान कर दिया है। इसके अलावा राज्य ने पिछले 3 वर्षों में बाढ़ की वसूली के लिए जो धन प्रदान किया था वो अभी तक खर्च नहीं किया।
We're happy to have shared responsibility here, and I think I'm demonstrating that today. We made a reasonable response. It was politicized by the state government, so I'm just not going to allow that to go on. So we'll stump up. But I'm looking forward to the Queensland government being more transparent about this. We're now meeting 2/3 of the costs of the flood response in Queensland.
Newcastle के एक पब में कल रात एक नाराज पेंशनर द्वारा सामना किए जाने के बाद प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि उन्हें स्वयं लोगों से मिलकर उनकी बात सुनना पसंद है। डिसेबिलिटी सपोर्ट पेंशनर रे ने न्यूकासल के एजवर्थ टेवरिन की एक अनौपचारिक चुनाव पूर्व यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को घेर लिया। रे ने श्री मॉरिसन के चेहरे के सामने बार बार उंगली उठाते हुए उन पर आरोप लगाया कि वो काम करने वाले ऑस्ट्रेलियन लोगों का समर्थन करने के लिए अपने शब्दों पर खरा नहीं उतर रहे। श्री मॉरिसन कहते हैं कि वो समझ सकते हैं कि रे अपने जीवन में हुई कुछ जटिल चीजों से परेशान थे और उनका कार्यालय जो भी मदद कर सकता है वो करेगा।
As you move around, I like hearing from people, and you know, I hear from people all the time. And so while some might have some very complex issues that need to be addressed, others, I must say, who were there last night, it was great to see them.
और प्रधानमंत्री से जुड़ी 2007 की पूर्व चुनाव लड़ाई में केंद्रित एक व्यक्ति का कहना है कि स्कॉट मॉरिसन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि क्या हुआ था। माइकल टॉफके ने नेटवर्क 10 के द प्रोजेक्ट को बताया कि श्री मॉरिसन ने न्यू साउथ वेल्स के क्रोनाला दंगों के स्थल कुक के मतदाताओं के लिए पूर्व चुनावी लड़ाई में उनके विरोध में एक शातिर अभियान चलाया। श्री मॉरिसन ने उन दावों का खंडन किया है जिसमें ये भी शामिल है कि उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई कि श्री टॉके एक मुस्लिम थे और लोगों को उन्हें वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो लेबनानी हैं। लेकिन श्री टॉके का कहना है कि जब सच्चाई की बात आती है तो मॉरिसन के पास अधिक विश्वसनीयता नहीं होती है और उन्हें इस सप्ताह एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री से एक टेक्स्ट संदेश मिला है जिसमें कहा गया है कि वो उन पर यानी टॉके पर विश्वास करते हैं।
I'm not saying he's a racist. I don't know him well enough, but he's certainly used racism, Islamophobia, you know, bigotry with refugees, with dead families of dead refugees, with migration policies, and he's been dumped on by his own side.
फेडरल विपक्ष के नेता एंथनी एल्बनीसी ने प्रधानमंत्री से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद रूसी राजनयिकों को बाहर निकालने का आह्वान किया है। श्री एल्बनीसी का कहना है कि ये सुझाव ऑस्ट्रेलिया में रूसी राजदूत तक के लिए नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की तरह ऑस्ट्रेलिया को सैकड़ों रूसी राजनयिकों और कर्मचारियों को निकाल देना चाहिए। उनका कहना है कि यूक्रेन में रूसी बलों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के जवाब में उपाय किए जाने चाहिए।
We have war crimes being committed. We have civilians being murdered. We have rape being used as a weapon of war, and we need to send the strongest possible message to Russia and join with our allies in Europe who've made this decision.
विदेश मंत्री मारिस पेन ने इस सप्ताह कहा था कि रूसी राजनयिकों के निष्कासन की लगातार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों को लेकर रूसी राजदूत को पिछले सप्ताह फिर से विदेश मामलों के विभाग के सचिव के साथ बैठक के लिए बुलाया गया था। यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया पार्टी के अध्यक्ष और फेडरल सेनेट के उम्मीदवार क्लाइव पामर ने देश की आवास स्थिति को एक आपात स्थिति कहा है। इसकी तुलना युद्ध और ग्रेट डिप्रेशन से की है। श्री पामर ने अपनी पार्टी के वादों को पूरा करने के लिए आज नेशनल प्रेस क्लब को संबोधित किया और इसमें ऑस्ट्रेलिया के कर्ज का भुगतान और आर्थिक विकास में वृद्धि शामिल है। उन्होंने आगामी चुनाव में अपनी पार्टी के संसदीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए अपने संकल्पों में होम ओनरशिप और खनन प्रतिबद्धताओं को भी उठाया, ये कहते हुए कि वो आर्थिक मामलों के लिए एक अलग दृष्टिकोण लाते हैं। श्री पामर का कहना था कि कोषाध्यक्ष जॉश फ्राइडनबर्ग और लेबर के भावी कोषाध्यक्ष जिम चार्मस दोनों के पास दैनिक जीवन में सीमित व्यवहारिक अनुभव है।
Today I intend setting out the real economic crisis facing the nation and how it must be addressed to save every Australian from the economic catastrophe we are now facing. It's the elephant in the room that both the Liberal and Labor parties failed to address.
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल बुधवार को यूक्रेन की स्थिति पर लोकसभा में कहा कि भारत संघर्ष के पूरी तरह से खिलाफ है और तत्काल हिंसा समाप्त करने के पक्ष में है तथा इस मुद्दे पर उसने कोई पक्ष चुना है तो वो है शांति का पक्ष। यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत का रुख राष्ट्रीय विश्वास और मूल्यों, राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय रणनीति के तहत निर्देशित है। उन्होंने कहा कि संवाद और कूटनीति ही एकमात्र उपाय है। उनका कहना था कि आज की वैश्विक परिस्थिति में हमारा मानना है कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सभी की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति स्तर से लेकर हर स्तर पर संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं बात की और उन्होंने बताया कि भारत की यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भारत का यही संदेश था कि भारत शांति के लिए कोई भी मदद कर सकता है तो इसके लिए तैयार है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 74 सेंट और भारत के 56 रुपए 71 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में, ऑस्ट्रेलिया के निक गैरियोस ने टॉमी पॉल को सीधे सेटों में हराकर ह्यूस्टन में यूएस मेंस क्ले कोर्ट चैंपियनशिप के अंतिम आठ में प्रवेश कर लिया है। मौजूदा विश्व नंबर 94 ने अमरीकी टॉमी पॉल को 6-4, 6-2 से सिर्फ एक घंटे से अधिक समय में हराकर अपना प्रभावशाली फॉर्म बनाए रखा। कैरियोस, जो पिछले हफ्ते मियामी ओपन में चौथे दौर में और पिछले महीने इंडियन वेल्स के क्वार्टर में पहुंचे थे, उन्होंने 2019 के बाद से क्ले कोर्ट पर अपनी पहली जीत हासिल की थी जब उन्होंने मैकेंजी मैकडोनल्ड्स को इस सप्ताह के शुरू में 3 सेटों में हराया था। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शुक्रवार को पर्थ में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री। एडिलेड में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। होबार्ट में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। कैनबरा में बौछारें, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। सिडनी में बारिश, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछारें, अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। और डार्विन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।